अब अगला इशू, दो हो गए, पहला क्या आता है घरों में इजाजत लेकर आओ, दूसरा क्या आता है कि मर्द भी अपनी इज्जत का एहतमाम करें, औरतें खुद को छुपा के रखें, तीसरा क्या है कि वो लोग जो बिन ब्याहे बैठे उनकी शादियां कर दो। ये जिना के रास्ते में एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है कि फिर क्या करें, फिर शादी नहीं हो रही तो फिर गलत चीजें सोचते हैं। तो फरमाया तुम में से जो लोग अकेले हो, यानी मुजर्रत मीन के मर्द की बीवी नहीं है, बीवी का मर्द नहीं है, इसमें डांट शादीशुदा भी आ सकते हैं, अनमैरिड भी आ सकते हैं, यानी जिनके साथ उनका हस्बैंड या वाइफ नहीं है, और तुम्हारी लौंडी गुलामों में से जो साले हो इनके निकाह कर दो। अगर वो गरीब हो तो अल्लाह अपने फजल से इनको गनी करेगा, अल्लाह बड़ी वसत वाला और इल्म वाला है। और जो निकाह का मौका ना पाए फिर क्या करें, यानी बच्चों की शादियां कर, डोंट डिले मैरिजेस किसी वजह से, कोई रीजन आप बनाए, वो माँ है, बाप है, बच्चे हैं, जो भी है, एज सुन एज पॉसिबल शादी कर दे। हदीस में आता है कि तीन चीजों में जल्दी करो, जिसमें एक चीज क्या है कि जब किसी का साथी ना रहे तो उसके दूसरे निकाह में, बच्चा बच्ची जवान हो जाए उसकी शादी कर दो। फरमाया अगर वो कोई गुनाह करेगा तो उसका बवाल तुम पर पड़ेगा। आज आप देख लीजिए, 18 साल से पहले आप लीगली मैरिज तो नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे, फिर अपने आप को नापाक करेंगे ना। एक रिपोर्ट मैंने एक मौके पे पढ़ के सुनाई थी कि 20 ईयर्स की एज तक पहुंचने वाली एक वेस्टर्न लड़की 3-4 पार्टनर बदल चुकी होती है, टेस्ट कॉन्शियस हो गए। हदीस में आता है कि जायके चखने जवाकीन व जवाकात, रंग रंग के जायके चखने और चखने वालियों पर अल्लाह ने लानत की। पहले 12, 14, 16, 18 साल में एक मर्द के पल्ले डाल दिया जाता था, सोचा भी अभी नहीं होता था कि मेरा आइडियल क्या है, मिल जाता था उसी से मोहब्बत हो जाती थी, जिंदगियां गुजर जाती थी। हमारी बड़ी सासे माए नानियां, उन्होंने जिंदगी ऐसी गुजार दी। आज जब पहले से आप टेस्ट कॉन्शियस हैं, आज क्यों रिश्ते नहीं होते, पहले तो माँ बाप की मर्जी होती थी, अब माँ की अलग, बाप की अलग, बच्चों की अलग, चूज बॉयज, कितने रोग हैं। इस पर बहुत डिटेल से हमने बात की भी अपने क्लास के दौरान कि रिश्तों को मुश्किल ना बनाए, बाज दफा कारोबार, बाज दफा जॉब, बाज दफा ब्यूटी, बाज दफा घर और बच्चों के जज्बात को चलते हैं। मैं कहती हूँ आज जो दुनिया का माहौल है वैस का, यहाँ तो इधर जज्बे पैदा हो फौरन शादी करें। आप भूखे हैं और आपको भूख लगी हुई है, आप बार बार जाके देखेंगे ना क्या पका हुआ है, हंडिया में क्या, फ्रिज में क्या, चूल्हे में क्या, एक दफा बिठा के खिला दें तो कभी पूछता भी कोई नहीं। इससे पहले कि ख्वाहिश उभरे बच्चों के लिए तैयारी करें, और यकीन करें आज वो वक्त आ गया है कि हम बिल्कुल प्यूबर्टी के फौरन बाद बच्चों के रिश्ते देखना शुरू करते हैं। ना कर सके, अब सवाल है कि अब चाहते तो है तो करना है, होता ही नहीं, ये भी होता है, हर जगह तो नहीं चाहता कि बंदा जो चाहे वो तो कबल जस्ता फिल ला यजी तो ना निकाह, अब निकाह नहीं हो रहा, रिश्ता नहीं आ रहा, या बच्ची नहीं मिल रही, क्या करें। जो निकाह का मौका ना पाए तो उनको इफ्फत माँ भी इख्तियार करना चाहिए, यहाँ तक अल्लाह अपने फजल से इनको गनी करे। ये कह फिर वो गंदी चीजें ना देखो, फिर वो मैरिड दोस्तों के साथ ना बैठो, फिर फिल्में ना देखो, ऐसे गाने ना सुनो जिससे जज्बात उभरे। और अल्लाह के नबी ने बड़ा प्यारा तरीका बताया कि रोजे रखो, कसरत से वो लोग रोजे रखें जिनकी शादी नहीं होती, क्योंकि रोजा जज्बात को ठंडा कर देता है। तो ये भी एक मौके की बात है, अपना दिल कुरान से लगा ले, नमाज में, इबादत में लगाए, हजरत मरियम ने किस चीज में अपना दिल लगाया था, तो लिहाजा फिर ऐसी तमाम चीजें, ऐसी महफिलें, ऐसी पार्टियां छोड़ दें जहां जाकर फिर आपका दिल खराब होता है और आपके दिल में ऐसे जज्बात आते हैं। अब उससे अगली वजह क्या है जिना को रोकने की, कि जो गुलाम गुलामी से निकलना चाहते हैं, लौंडी लौंडी नहीं रहना चाहती, तो उनको मुकातबत के जरिए से आजाद कर दो। ये आजकल है नहीं है लेकिन हम पढ़ेंगे इधर। और तुम्हारे ममलूकों में जो मुकातबत की दरख्वास्त करें इनसे मुकातबत कर लो, अगर तुम्हें मालूम हो कि इनके अंदर भलाई है, और इनको इस माल में से दो जो अल्लाह ने तुमको दिया। अगली रीजन जिना की कहवागरी, और वो क्या होती, प्रोस्टिट्यूशन। यहां भी समझ लीजिए अब्दुल्ला बिन उबई का बिजनेस क्या था, यहां नोट कीजिएगा, दिल में निफाक का बात है जब बिजनेस में हराम होता है। वो प्रोस्टिट्यूशन कराता था, लौंडियां ले आता खूबसूरत सी, फिर उनको मर्दों को देता, उनके पैसे खाता था, उसी का अल्लाह ने यहां जिक्र किया। और अपनी लौंडियों को अपने दुनियावी फायदों की खातिर जिस्म फरोशी पर मजबूर न करो, जबकि वो खुद पाक दामन रहना चाहती हैं, और जो कोई इनको मजबूर करे तो इस जबर के बाद अल्लाह इनके लिए गफूर रहीम है। यह आखिरी सब बड़ा प्यारा है, तवाइफों को भी अल्लाह ताला उम्मीद दिला रहा है कि अगर तुम किसी हालात की मजबूरी में किसी कोठे पे बिठा दी गई हो, किसी मर्द के हाथों में आ गई हो, अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। देखिए आज देखिए ऐसी औरतों को माशरे में कोई इज्जत नहीं मिलती, लेकिन जो लोग इनको देखते हैं, जो इनके पास जाते हैं, वो तो शहर के बड़े लोग होते हैं। कितना बड़ा जुल्म है कि ऐसी औरत को तो आप तवाइफ कह के पीछे कर दें, किसी चीज में उसको न लाएं, लेकिन जो लोग इनसे गुनाह करें और इनका माल कमाएं वो शहर के बड़े रईस और मालदार लोग हैं, जो अपनी खुशियों के मौकों पर इनको नचाएं, तो ये भी जुल्म है। कोई औरत अपनी तबीयत के एतबार से अपने शौहर के अलावा किसी मर्द के साथ ताल्लुक नहीं चाहती, ये तो माहौल और सोच बदली और परवर्टेड सोसाइटीज हैं, तो ये बातें आपको दिखेंगी इक्का दुक्का ऐसी। अदरवाइज आप देखिए कि कोई औरत नहीं पसंद करती, अपने मर्द के साथ भी अल्लाह ही दिल में डाल देता है, तो वरना कोई औरत अपनी तबीयत से इस चीज को पसंद ही नहीं करती। तो वो औरतें आज मजबूर हैं, मजलूम हैं, जिनके साथ ये काम किया जा रहा है, उन तक अल्लाह का दीन पहुंचाने की जरूरत है। हमने साफ साफ हिदायत देने वाली आयात तुम्हारे पास भेज दी हैं, और इन कौमों की इबरतनाक मसाले भी हम तुम्हारे सामने पेश कर चुके हैं जो तुमसे पहले हो गुजरी हैं, और वो नसीहतें हमने कर दी जो डरने वालों के लिए होती हैं। है हर चीज क्लियर? कोई कह सकता है नहीं पता, अल्लाह ने ये छोड़ा नहीं वो नहीं बताया, तो अब क्या करो? अब ये सब कब आएगा? जब दिल में अल्लाह का नूर आएगा। इसलिए आयत नूर बड़ी प्यारी ना आयत है इस बारे की, अल्लाह नूरु समावाती वल अर्द, अल्लाह आसमानों जमीन का नूर है, कायनात में इसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक में चिराग रखा हो और चिराग एक फानूस में हो, और फानूस का हाल ये हो कि जैसे मोती की तरह चमकता हुआ तारा, और वो चिराग जैतून के कैसे मुबारक दरख्त के तेल से रोशन किया जाता हो जो ना मशरकी हो ना मगरबी, जिसका तिलापिया भड़कता पड़ता हो चाहे आग इसको लगे या ना लगे, इसी तरह नूर हो नला नूर, रोशनी पर रोशनी, बढ़ने के तमाम असबाब जमा हो गए हों। यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है, वो लोगों को मिसालों से बात समझाता है, और वो हर चीज से खूब वाकिफ है। इसके नूर की तरह हिदायत पाने वाले इन घरों में पाए जाते हैं जिन्हें बुलंद करने को और जिनमें अपने नाम की याद का अल्लाह ने इज़्ज़त दिया। इनमें ऐसे लोग हैं सुबह शाम जो उसकी तस्बीह करते हैं, जिन्हें तिजारत और खरीदो फरोख्त अल्लाह की याद से और इकामत नमाज और अदाए ज़कात से गाफिल नहीं करती। अल्लाह का नूर, यहाँ बात हुई, ये क्या है? ईमान का नूर है। जितना दिल में ईमान इस्लाम आएगा उतनी अल्लाह की से मोहब्बत होगी। आप इन आयतों की तफसीर भी सुन सकते हैं इंशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आयत है कि जिसमें कैसे दिल में जब अल्लाह की मोहब्बत आती है तो ऐसा बंदा ईमान से भरता है, और उसका फिर अमली रवैया क्या है कि वो फिर मस्जिदों में पाया जाता है, और मस्जिदों में ऐसे लोग हैं जिनको तिजारत नहीं रोकती। आज भी रिस्क हलाल कमाने वाले इस बात की गवाही देंगे कि हम फर्ज नमाज के वक्त मस्जिद के बगैर नमाज पढ़ ही नहीं सकते, इसके बावजूद अल्लाह ने इतना रिस्क उनको दिया कि समेटे नहीं सिमटती। अब्दुर्रहमान बिन औफ बहुत बड़े बिजनेसमैन थे लेकिन 5 वक्त के नमाजी थे। तो किसी ने उनसे पूछा था कि आपके से इतनी दौलत कैसे है, तो उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि मैंने अपने असूल जो बनाया उसमें एक असूल लिया कि जब नमाज का वक्त आ जाए तो मैं मस्जिद में आऊंगा। तो फिर उनको अल्लाह ने रिस्क दिया ना। आज आप जुमा छोड़ दें और आप कहते हैं जॉब नहीं छुट्टी दे रही, तो जिस मर्द ने जुमे की नमाज छोड़ के कमाया उस कमाने के बाद ना तो वहां बरकत है और ना ही अल्लाह के कामों को मानने की तौफीक है। तो रिस्क हलाल अल्लाह के रास्ते में रुकावट नहीं बनता अगर हम उसको अल्लाह ताला के हुक्म से लेते हैं। तो अल्लाह कहते हैं अगर अभी भी खौफ नहीं आया तो क्यामत का दिन याद करो, और वो कौन सा दिन है? यखाफूना यौमा ततकल्लबु फीहिल कुलूबु वल अबसार, वो इस दिन से डरते हैं जिसमें दिल उलटने और दीदे फिरा जाने की नौबत आ जाएगी, और वो ये सब इसलिए करते हैं ताकि अल्लाह इनको बेहतरीन आमाल की जजा दे और मजीद अपने फजल से नवाजे। और बात यह है कि तुम्हारे इससे रिस्क नहीं बढ़ेगा बल्कि वल्लाहु यरज़ुकु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। रिस्क अल्लाह ने देना है, अल्लाह को नाराज करेंगे तो भी, राजी करेंगे तो भी। ये नूर की मिसाल थी, अब अगली आयतों में कुफर की मिसाल है जो अंधेरे हैं। वल्लज़ीना कफरू अमालहुम कसराब, इसके बरक्स जिन्होंने कुफर किए इनके अमाल की मिसाल ऐसी है जैसे किसी सहरा में बगैर पानी के सराब हो। मिराज की मिसाल है, दूर से धूप में चमकता हुआ पानी दिखता है, प्यासे इसको पानी समझे मगर जब वो पास पहुंचा तो कुछ ना पाया बल्कि इसने वहां अल्लाह को मौजूद पाया जिसने इसका पूरा पूरा हिसाब चुका दिया, और अल्लाह को हिसाब लेते देर नहीं लगती। या फिर इसकी मिसाल ऐसी है जैसे गहरे समंदर में अंधेरा के ऊपर एक मौज छाई हुई, फिर इस पर एक और मौज, और इसके ऊपर बादल तारीकी पर तारीकी मुसल्लत है, आदमी अपना हाथ निकाल ले तो भी उसे ना देख पाए, और जिसे अल्लाह ही नूर ना बख्शे इसके लिए फिर कोई नूर नहीं है। काफिर का दिल अंधेरों की माजगा है, उसके अंदर डिप्रेशन है, खौफ है, गम है, तोहम परस्ती है, और इसी गम को दूर करने के लिए कभी शराब से काम लेता है तो कभी जिना से काम लेता है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें दुनिया के अंधेरों को दूर करने की तौफीक दे। अब अगली आयतों में टीम वर्क है, मैंने और आपने नियत की है कि दुनिया में इस्लाम का नूर फैलाना है, कुरान के नूर को आम करना है, तो उसका अल्लाह कहते हैं तरीका बादलों से और परिंदों से सीख लो। कैसे? अलम तरअन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्द, क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं वो सब जो आसमानों और जमीन में है, और वो परिंदे जो पर फैलाए उड़ रहे हैं। हर एक अपनी नमाज और तस्बीह का तरीका जानता है, और ये सब कुछ जो कुछ वो करते हैं अल्लाह इससे बाखबर रहता है। आसमान और जमीन की बादशाही अल्लाह के लिए है, और इसी की तरफ सबको पलटना है। जानवरों को, परिंदों को पता, तो इंसान को क्यों नहीं पता? अब आप चाहते हैं कि आप इंसानियत पर रहमत की बारिश बने, कितने लोग चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब चाहते हैं ना कि इस पूरी दुनिया पे आपको अपने लोगों से ज्यादा गैर मुस्लिमों पे प्यार आना चाहिए और उनके लिए रहमत है, तो तरीका क्या होगा? अब कैसे हम दीन का काम करें? आपको हिंट मिलेंगे इस आयत में, अलम तरअन्नल्लाह युस्जी सहाबा, क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह बादलों को आहिस्ता आहिस्ता चलाता आता है, फिर इसकी टुकड़ियों को बाहम जोड़ता है, फिर इसे समेट कर एक गहरा बादल बना देता है, फिर तुम देखते हो कि इसके खौल में से बारिश के कतरे टपकते चले आते हैं, और वो आसमान से इन पहाड़ों की बदौलत जो इसमें बुलंद है ओले बरसाता है, फिर जिसे चाहता है इनका नुकसान पहुंचाता है और जिसे चाहता है इनसे बचा लेता है। इसकी बिजली की चमक आंखों को हीरा किए देती है, रात और दिन का उलटफेर वही कर रहा है, और इसमें एक सबक है आंखों वालों के लिए। और अल्लाह ने हर जानदार को एक तरह के पानी से पैदा किया। ये बादलों के बनने का अमल कैसे है? आप देखिए कि दीन का काम एक बारिश, यानी जैसे आसमानी बारिश है ना, इस तरह ये वही की बारिश है जो इस वक्त हमारे दिलों पे पड़ती है। ये इतने आराम से हम तक नहीं पहुंचती, एक इंसान कई मरहलों से गुजरता है। आप देखिए कि इस पूरे प्रोसेस को अगर हम देखें, किसी भी स्कूल या इदारे या किसी भी, मतलब आप मदरसे से सोचिए, कई उस्ताद होते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कोई कहीं से पढ़ता है, कहीं कई घाट का पानी पीता है इंसान, उससे सीख, उससे सीख, इससे सीख, उसके साथ, फिर उसके बाद दूसरा आता है, फिर लाइक माइंडेड लोग हैं, फिर वो अपनी स्किल्स लेकर आते हैं, वो कहता है अच्छा मुझे पढ़ाना आता है, वो कहता है मुझे बोलना आता है, वो कहता है मुझे मैनेजमेंट आती, कोई कुछ, वो सब छोटी छोटी बदलियों की तरह जमा होते हैं। जब सब जमा होते हैं एक ऐसी जगह पे अल्लाह उनको पहुंचाता है जहां बारिश की जरूरत होती है, फिर वो वहां जमा होते हैं, फिर वहां के लोगों को खैर देते हैं, फिर वहां लोगों के अंदर कुरान की रोशनी फैलती है, फायदा होता है, फिर अल्लाह वहां से उठाता है बादलों को कहीं और लेता है। आज उम्मत मुस्लिमा को ये बादलों वाली मिसाल बनना है। बहुत देर से हम सुनते आए ये बात कि कुआं प्यासे के पास नहीं आता, कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासा कुएं के पास आता है, मान लेते हैं, लेकिन उम्मत मुस्लिमा ने कुएं नहीं बनना, क्योंकि प्यासे खुद नहीं आते, पानी पीने तो आ जाएंगे, इल्म का पानी नहीं पीते। मुझे और आपको लोगों तक पहुंचना है। कल एक ब्रदर मुस्लिम हुए, उनकी पिक्चर्स मैंने कहीं देखी, तो जो ब्रदर्स के चेहरों पे खुशी उनको देखकर मैं सोच रही थी ये है सच्ची खुशी। कि अल्लाह के नबी ने हजरत अली से कहा था कि आपकी वजह से अल्लाह ताला किसी को अगर एक हिदायत दे देगा तो फिर वो आपके हक में सुर्ख ऊंटों के मिलने से बेहतर है। तो आप और मैं भी नियत करते हैं, क्या हमारी ये धरतियां प्यासी हैं? क्या जरूरत है? तो हर एक अपनी स्किल्स लेकर आए, जो जितनी अपनी स्किल्स अल्लाह के रास्ते में लाता है अल्लाह उतनी खैर ले आता है। और मैंने देखा कि आप तन्हा चलते हैं और लोग मिलते जाते हैं और काफिला बन जाता है। एक वो वक्त था कि तन्हा थे हम जमाने में, लोग मिलते गए और काफिला बनता गया। और आप दीन के काम के लिए खुद अपने आप को पेश कर दें और अल्लाह पे नजरें लगा लें, खुद ब खुद लोग आएंगे। जैसे साहबे कहाब को अल्लाह ने जोड़ दिया था ना, इधर उधर से आके सब एक जगह जमा हो गए। मेरा ईमान है जब भी कहीं अल्लाह ने काम लेना होता है, वो लोग जिनके बारे में वहमो गुमान में भी नहीं होता, वो लोग आते हैं और आपके हेल्पर बन जाते हैं। तो ये मेरा और आपका काम है, हम अपने लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह अगर मेरे अंदर कोई गुण है, कोई खूबी है, उसको इंसानियत के लिए रहमत उसका जरिया बना दे। फिर जानवरों की कुछ बातें, फमिन हो में यमशी अला बतनी ही, वमिन हो में यमशी अला रिजलैन, कोई पेट के बल चलता है, बोले कौन? साथ साथ बोलिए, सांप। और कोई दो टांगों पर चलता है, कौन? और कोई चार टांगों पर चलता है, और कोई ऐसा भी जो इन सब पे चलता है? इंसान। बच्चा शुरू में पेट पे क्रॉल करता है, फिर चार टांगों से टुप 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 चलता है, फिर दो पे चलता है। अल्लाह ने इंसान को सारी तरह से चलना सिखा दिया, और कयामत के दिन अल्लाह माथों के बल चलाएगा। आपको पता, पूछा अल्लाह के नबी लोग माथे से कैसे चलेंगे? कहा जिसने टांगों पे चलना सिखाया वो माथे पे चलना भी सिखा देगा। अल्लाह हमें उस दिन की रुसवाई से बचाए। जो कुछ वो चाहता है पैदा करता है, वो हर चीज पर कादिर है। हमने साफ साफ हकीकत बताने वाली आयात नाजिल कर दी है, आगे सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत अल्लाह ही जिसे चाहता है देता है। ये लोग कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह और उसके रसूल पर। अब सूरत का खात्मा है।